Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने बड़ी चुनौतियों का सामना किया और सोना हासिल करने के लिए हर तरह की हिंसा का उसने सहारा लिया। इसी हिंसा की वजह से उसके साथियों ने राजा से उसकी शिकायत की। कोलंबस एक इतालवी नाविक था जिसने हिंदुस्तान पहुंचने का बीड़ा उठाया, लेकिन वो अमेरिका जा पहुंचा। उसे ये भी नहीं पता था कि ये एक नया महाद्वीप है। कई साल के बाद स्पेनिश नाविक एमरिगो वेस्पुची ने इस महाद्वीप की यात्रा की, इस अंतर के साथ कि वो जानता था कि ये एक नया महाद्वीप है। वेस्पुची ने इस महाद्वीप के अक्सर इलाकों का दौरा किया और उनका नक्शा तैयार किया। उसके बाद यूरोपीय नाविक जिस नक्शे का इस्तेमाल करते थे वो एमरिगो का ही नक्शा था। इसी वजह से इस महाद्वीप को एमरिगो कहा जाने लगा, जो बाद में चलकर अमरीका हो गया। दोस्तों, ये दुनिया के बनते और बिगड़ते इतिहास के बारे में पॉडकास्ट का तीसरा एपिसोड है। मैं हूं अहमद अब्बास, आप सबको मेरा सलाम और नमस्कार। उम्मीद है इस तारीख की इस दिलचस्प दास्तान में आखिर तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो हमने बताया कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने बड़ी चुनौतियों का सामना किया और सोना हासिल करने के लिए हर तरह की हिंसा का उसने सहारा लिया। इसी हिंसा की वजह से उसके साथियों ने राजा से उसकी शिकायत कर दी। आखिरकार राजा कोलंबस से नाराज हो गया। उसे अपना अंतिम जीवन गरीबी में बिताना पड़ा और अपमानित होकर इस दुनिया से उसे जाना पड़ा। उसके बाद फर्डिनांड मेगलान नाम का एक पुर्तगाली नागरिक स्पेनिश राजा के दरबार में पहुंचा। पोप अलेक्जेंडर सिक्स द्वारा दुनिया को दो हिस्सों पूरब और पश्चिम में बांटने और पूरब का हिस्सा पुर्तगाल और पश्चिम का स्पेन को प्रदान करने के बाद मेगलान ने खोजे जाने वाले हर देश और इलाके की सही पहचान करने के लिए रात दिन एक कर दिए। उसने अपने भौगोलिक नक्शे को जितना भी ऊपर नीचे किया उतना ही उसे यकीन होता गया कि मलुकु आइलैंड आम सोच के विपरीत स्पेन के क्षेत्र में स्थित है। मेगलान के बारे में ये सोच जमीन के गोल होने पर आधारित थी, जबकि पोप का मानना था कि जमीन चपटी है। अगर मेगलान अपने देश में जमीन के गोल होने की बात कहता तो उसे गद्दार कहा जाता और पोप का विरोध करने के कारण उस पर मुकदमा चलाया जाता। इसलिए पुर्तगाल में अपनी बात रखने के बजाय मेगलान ने स्पेन का रुख किया और स्पेनिश दरबार में हाजिर होकर अपनी बात रखी। मेगलान जब स्पेन पहुंचा तो वहां के राजा फिलिप डेरिस्कोन थे। मेगलान की बातों से वो खुश हुए और सोने के बुखार में पड़ने के बाद अब उन पर मसालों का बुखार चढ़ गया। स्पेन के दरबार ने कोलंबस का भरोसा किया और काफी सोना अपने खजाने में भर लिया। अब ये दरबार मेगलान पर भरोसा दिखाकर मलुकु आइलैंड के कीमती मसालों पर भी हाथ साफ करना चाहता था। मेगलान ने स्पेन के राजा को यकीन दिला दिया कि पश्चिम की ओर जाकर मलुकु आइलैंड पहुंचा जा सकता है और उसे राजा के नाम पर फतह किया जा सकता है। बहरहाल, मेगलान के जहाज ने पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जिसे आज दक्षिण अमेरिका कहा जाता है। मेगलान का जहाज 3 हफ्ते बाद उस स्ट्रेट से गुजरा जो आज उसके नाम से ही जाना जाता है। इस स्ट्रेट से गुजरने के बाद उसे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तट उत्तर की ओर बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसके दूसरे छोर पर अमरीकी महाद्वीप है और वो अब नए महासागर में प्रवेश कर गया है। एटलस महासागर के विपरीत इस नए महासागर में तूफानी मौजें नहीं थीं, इसलिए मेगलान और उसके साथियों ने उसे शांत कहा। पैसिफिक ओशन में काफ़ी आगे बढ़ने के बाद जब कोई तट या जहाज दिखाई नहीं दिया तो नाविकों को चिंता होने लगी। उन्हें इस ओशियन में आगे बढ़ते हुए 3 महीने और 23 दिन हो गए थे। खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था। नाविकों को एक अजीब सी बीमारी ने जकड़ लिया था। उनके मसूड़े फूल गए थे और उन्हें शदीद दर्द था, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पा रहे थे। एक एक करके नाविकों की मौत होने लगी, जिनकी लाशों को समुद्र में फेंक दिया जाता था। बाकी बच्चे नाविकों को लगने लगा कि इस महासागर का कोई अंत नहीं है और अब उनकी भी मौत पक्की है। जहाज के कैप्टन का नाम गैस्पर डी क्वेसाडा था। उसने मेगलान से कहा कि हमें उसी रास्ते से लौट जाना चाहिए जिससे यहाँ तक हम पहुँचे हैं, लेकिन मेगलान को अपने कैलकुलेशन पर पूरा भरोसा था और वो किसी भी तरह से वापस लौटने के लिए तैयार नहीं था। उसने बगावत को कुचल दिया और क्वेसाडा को सजा देने का मन बना लिया। कैप्टन को एक तख्ते पर लिटाकर उसके हाथों और पैरों को रस्सी से बांध दिया गया। 4 तगड़े नाविकों को मेगलान ने सोने के सिक्के दिए और कहा कि कैप्टन के रस्सी को चारों ओर से खींचे। क्वेसाडा की चीखों से प्रशांत महासागर की शांति भंग हो रही थी। उसके बाद किसी में मेगलान का विरोध करने का साहस नहीं हुआ। उसने क्वेसाडा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला दिया। मेगलान का जहाज पैसिफिक ओशियन में 23,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था और आखिरकार बसंत की एक सुबह दूर से जमीन दिखाई दी। लेकिन जहाज पर सवार लोग इतने थके हुए और कमजोर हो गए थे कि उनमें खुशी मनाने की भी सकत नहीं बची थी। मेगलान अपने एक मलायो गुलाम के साथ, कि जिसे उसने स्पेन से खरीदा था, तट पर गया। वो गुलाम स्थानीय लोगों की जबान समझता था और उन्हें अपनी बात समझा सकता था। अब मेगलान को यकीन हो गया था कि वो अपने लक्ष्य से नज़दीक है और उसने पृथ्वी का चक्कर लगा लिया है। उसने इन तटों का नाम स्पेनिश राजा फिलिप के नाम पर फिलिपीन रख दिया। लेकिन वो वहाँ ज़्यादा दिन नहीं ठहरा और मलुकु आइलैंड के लिए निकल पड़ा। महाद्वीप में यात्रा फिर से लंबी हो गई और खाना और दवाओं का भंडार खत्म होने लगा। एक दिन जैसे ही नाविकों की नज़र ज़मीन पर पड़ी, वो खुशी से उछल पड़े। जहाज जब द्वीप के निकट पहुंचे तो स्थानीय लोग उन्हें देखने के लिए दौड़ पड़े। मेगलान ने आदेश दिया कि तोपों के गोले दागे जाएं। तोपों की गरज से द्वीप के लोग सहम गए और उन्होंने स्पेनिशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वीप की बेनज़ीर खूबसूरती को देखकर मेगलान ने उसका नाम स्वर्ग द्वीप रखा। हालांकि स्थानीय लोग उसे सेबू कहते थे। सेबू के सरदार ने मेगलान और उसके साथियों को अपने घर पर आमंत्रित किया। सरदार का घर लकड़ी और पत्तों से बना हुआ था। खाने के बर्तन भी लकड़ी के थे। खाने से मसालों की खुशबू आ रही थी। मेगलान समझ गया कि वो अब मसालों के द्वीप के करीब पहुंच चुका है। उसने सरदार को स्पेनिश राजा का शासन स्वीकार करने के लिए कहा, जिसे सरदार ने कबूल कर लिया। लेकिन कबीले के सरदार ने यह शर्त रख दी कि मेगलान उसके दुश्मनों को तोप से उड़ा दे। मेगलान ने गर्व से यह शर्त स्वीकार कर ली और मैक्टन आइलैंड पर हमला कर दिया। मैक्टन के लोग तट के निकट पहुंच गए और वो मेगलान की तोपों और बंदूकों से डरे नहीं। उन्होंने भालों और तीर कमानों से मेगलान और उसके साथियों पर धावा बोल दिया। जहर में बुझा हुआ एक तीर मेगलान के पैर में भी आकर लगा। स्थानीय लोग इतनी ज्यादा तीरंदाजी कर रहे थे कि मेगलान के साथी उसे अकेला छोड़कर पीछे हट गए। जहाज तेजी से तट से दूर चले गए और मेगलान की इच्छा पूरी होने से पहले ही मौत हो गई। मेगलान के बाद खुआन सेबेस्टियन एलकानो ने स्पेनिश बेड़े की कमान संभाली और तेजी से मलुकु आइलैंड की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अगले तट के निकट पहुंचकर उसे एक बहुत ही मनमोहक खुशबू का एहसास हुआ। यह खुशबू उन लोगों के लिए जानी पहचानी थी जो 1,000 किलोमीटर की दूरी से वहां पहुंचे थे। ये लौंग की खुशबू थी। स्पेनिश नाविक बड़े हैंडबैग हाथों में लेकर तट की ओर बढ़े। उन्होंने कई दिन अपने थैले मसालों से भरे। उन्होंने करीब 30 टन लौंग और मसाले जहाजों पर लाद दिए। उसी दौरान एक नाविक ने खबर दी कि द्वीप के दूसरी ओर से किसी और देश के 30 जहाज गुजर रहे हैं। उनमें से एक जहाज पर पुर्तगाल का झंडा लहरा रहा था। पुर्तगाल के राजा ने जैसे ही मेगलान की यात्रा के बारे में सुना, उसके पीछे जहाज़ों का एक बेड़ा रवाना कर दिया था। पुर्तगाली अफ्रीका के रास्ते से पूरब की ओर पहुंचे थे और उन्हें पता नहीं था कि मेगलान ने पश्चिम की ओर से पृथ्वी का चक्कर लगाया है। पुर्तगालियों का वहां पहुंचने का मतलब था उन सभी स्पेनिशों की मौत जो उनके हाथ लग जाते, लेकिन स्पेनिशों ने तेजी से अपने जहाजों को वहां से निकाल लिया। जब स्पेनिश मलुकू आइलैंड पहुंचे थे तो वहां के लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया था। वहां के सरदार ने आदेश दिया कि ये लोग जितने मसाले अपने साथ ले जा सकते हैं ले जाएं। यहां तक कि उसने स्पेन से आने वालों की सेवा में माहिर गोताखोर और बढ़ई भी भेज दिए ताकि उनके जहाज़ों की मरम्मत की जा सके। एल्कानो ने स्वदेश वापसी के लिए वही रास्ता अपनाया जिसे पुर्तगालियों ने खोजा था। वो पुर्तगालियों द्वारा पीछा किए जाने से चिंतित भी था, लेकिन वो उनका सामना किए बिना अफ्रीका के पश्चिमी तटों तक पहुंच गया। अब वो अपने उस क्षेत्र में पहुंच गए थे जिसे पोप ने उन्हें सौंपा था। कोई नहीं जानता था कि ये जहाज जमीन का चक्कर लगाकर पूरब से वापस लौटे हैं। हर कोई यही सोचता था कि वे पश्चिम की ओर से आए हैं। जब वे सेंटियागो आइलैंड पहुंचे तो एल्कानो ने ठहरने का आदेश दिया और नाविकों को जरूरी सामान की खरीदारी के लिए तट पर भेजा। एल्कानो का मुंशी भी तट पर गया और जब वापस लौटा तो उसने एल्कानो से पूछा कि आज क्या दिन है। एल्कानो ने कहा बुधवार। मुंशी ने कहा कि लेकिन द्वीप पर तो आज गुरुवार है। एल्कानो ने कहा यह मुमकिन नहीं है, मेरा हिसाब किताब सही है, मैं पहले ही दिन से हर दिन की घटनाओं को लिखता हूँ। मेगलान की डायरी भी यही है, उसके मुताबिक भी आज बुधवार है। उन्होंने फिर से अपनी डायरियों को चेक किया, कहीं कोई भूल चूक नहीं थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। उन्होंने पृथ्वी का पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाया था, यानी पृथ्वी के घूमने की दिशा के विपरीत, इसलिए वे एक दिन पीछे चले गए थे। अगर कोई जमीन का पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाएगा तो वो एक दिन आगे हो जाएगा। उस वक्त तक कोपरनिक ने पृथ्वी के अपनी ही धुरी पर घूमने का दृष्टिकोण पेश कर दिया था, लेकिन अभी वो ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ था और नाविक उसके बारे में नहीं जानते थे। स्पेनिश नाविक का पहले इंसान थे जिन्होंने ये अनुभव किया था। आखिरकार एल्कानो अपने साथियों के साथ स्पेन वापस लौट गया और विजेताओं की तरह उसका स्वागत किया गया। राजा ने एल्कानो को एडमिरल का खिताब दिया और कहा यह खिताब इसलिए नहीं है कि तुमने ज़मीन का चक्कर लगाया है, बल्कि इसलिए है कि तुमने पूरी ज़मीन पर मेरा झंडा फहरा दिया। आज मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं पूरी दुनिया का राजा हूँ। पोप के आदेश के मुताबिक मेरे नाविक पश्चिम में जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ सकते हैं और वे जितने भी इलाकों तक पहुँचेंगे वो स्पेन के होंगे। आप लोग भी पश्चिम की ओर गए थे और पोप के आदेश का आपने पालन किया था, इसलिए जितने भी इलाके तुमने खोजे हैं यानी पूरी दुनिया अब मेरे कब्जे में है। जब पोप ने जमीन को दो हिस्सों में बांटा था तो उन्हें पता नहीं था कि इस तरह की भी कोई घटना घट सकती है। सभी चीजें स्मार्ट फिलिप के हक में थीं, सिवाय एक समस्या के, और वो ये कि पुर्तगाली भी पूरब की ओर बढ़ सकते थे और वहां से जमीन का चक्कर लगा सकते थे। इसके बाद पूरी दुनिया पर स्पेनिशों का और इसी तरह से पुर्तगालियों का कब्जा होता। दुनिया का इतिहास इस दुनिया की तरह बहुत फैला हुआ है और इसलिए इसे तीन एपिसोड में नहीं समेटा जा सकता। अब हम शुरुआती दौर में हैं, लेकिन आगे आगे देखिए क्या होता है।